हॉस्पिटल में काफी तनावपूर्ण माहौल था। इशिका आदर्श के साथ कमरे में बैठी हुई थी और वे आयशा को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि आयशा ने इसके लिए अभिमन्यु से बहुत बहस की और अरमान का भी सहारा लेना चाहा, लेकिन अभिमन्यु की जिद के आगे आयशा और अरमान की एक नहीं चल रही थी। वहीं कमरे के अंदर राधिका को होश आने लगा था। इशिका और आदर्श जल्दी से खड़े हो गए। इशिका कुछ कहती उससे पहले आदर्श बीच में आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और वे रोते हुए बोले, राधिका तुम होश में आ रही हो, प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। राधिका ने एक पल के लिए आंखें खोली और अगले ही पल उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। आदर्श घबरा गया। ऐसी सिचुएशन में इशिका ने डॉक्टर को बुलाने के लिए जो कॉल बटन लगाया गया था उस पर हाथ रखा। घंटी की आवाज़ सुनकर तुरंत ही डॉक्टर राधिका के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वहां इतने सारे गार्ड्स को देखकर उन्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये VIP वार्ड था। डॉक्टर को देखकर गार्ड साइड में हो गए। आयशा ने भी मौके का फायदा उठाकर अंदर जाना चाहा, लेकिन गार्ड फिर से आगे आकर खड़े हो गए थे। डॉक्टर ने चेक किया और फिर कहा, देखिए इनकी सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन ये गुस्से की वजह से बेहोश हुई थी। इन्हें 30 मिनट्स में होश आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी 50 मिनट्स बीत चुके हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होश क्यों नहीं आया, कुछ और टेस्ट करने होंगे। ये सुनकर आदर्श और इशिका घबरा गए। वहीं बाहर खड़े बाकी लोग भी परेशान हो गए थे। अभिमन्यु ने तुरंत पृथ्वी को कॉल करके कहा, आसपास से कहीं से भी अगले एक घंटे में बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आओ। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। अभिमन्यु को भी राधिका की परवाह थी। ये सोचकर अबरमान ने उसके साथ बदतमीजी से पेश आना बंद कर दिया था और ना ही वो उन गार्ड्स को हटाने के लिए कह रहा था। ये आयशा के लिए अच्छी खबर नहीं थी। उसे लगा कि अरमान का सहारा लेकर वो इशिका को नुकसान पहुंचा पाएगी, लेकिन यहाँ अरमान और अभिमन्यु के बीच का माहौल नॉर्मल था। अचानक आयशा अभिमन्यु के कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, चाचू मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, वो मेरी मॉम है और मुझे भी हक है ये जानने का कि उनकी हालत ठीक है या नहीं। अगर आप इस वजह से मुझसे गुस्सा हैं कि मैंने इशिका के साथ बदतमीजी से बात की, तो मैं उससे माफी मांग लूंगी और आपसे भी। अरमान को आयशा पर दया आ गई थी। नक्शा अभिमन्यु को कुछ कहना चाहता था, लेकिन अरमान उससे पहले बोला, अभिमन्यु तुम क्यों इतना जिद कर रहे हो, मिसेस सिंघानिया आयशा की माँ है, उसे कम से कम उनसे मिलने तो दो। अभिमन्यु ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब साफ था कि वो आयशा को अंदर नहीं जाने देगा। वहीं अभिमन्यु को इस तरह जिद करते देखकर नक्श ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था चाचू आप इस तरह एरोगेंट हो जाएंगे, अपने फैमिली मेंबर की भी रिस्पेक्ट नहीं है आपके दिल में। नक्श और आयशा वहां खड़े होकर मन ही मन अभिमन्यु को कोस रहे थे, तभी अरमान के पास एक कॉल आया। ये कॉल केशव सिंघानिया का था, तो अरमान उसे किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकता था। वो थोड़ा साइड हुआ। अरमान कुछ कहता उससे पहले दूसरी तरफ से केशव की सख्त आवाज आई, कौन से वार्ड में है वो? अरमान चौंक गया। उसने अब तक राधिका की तबीयत के बारे में छुपा कर रखा था, फिर भी केशव को पता चल गया। आपको कैसे पता चला मिसेस सिंघानिया बीमार हैं? मैंने तो आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया था, अरमान ने धीरे से पूछा। अरमान को उसके सवालों के जवाब खुद ही मिल गए थे, क्योंकि उसकी नजर सामने खड़े एक गार्ड पर गई जो उसके साथ आया हुआ था। वो केशव का गार्ड था। अरमान ने गहरी सांस ली और कहा, वो हॉस्पिटल में है, क्या आप यहाँ उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं? अगर आप आना चाहते हैं तो अपने साथ कुछ अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को लेकर आइएगा, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। हालत कितनी खराब है? केशव ने गंभीर आवाज में पूछा। वो अभी तक बेहोश है, अरमान ने जवाब दिया। तभी उसे बैकग्राउंड में होने की आवाज सुनाई दी। इसी के साथ उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। अरमान ने जल्दी से पूछा, क्या आप यहाँ आ रहे हैं? मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। इतना कहकर अरमान ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। फिर उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी तो अरमान मन ही मन बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर, चाचू तुम्हारा सारा घमंड तोड़ देंगे। तुम्हारी वजह से सिंघानिया फैमिली को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसका हिसाब अब वही तुमसे लेंगे। अरमान तुरंत वहां से चला गया। किसी ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और ना ही उसके जाने को नोटिस किया, सिवाय आयशा के। उसकी नजरें अरमान पर ही टिकी हुई थी। आयशा जल्दी से नक्श के पास गई और बोली, लगता है मिस्टर सिंघानिया की फैमिली से कोई यहाँ पर आया है। क्या सच में ऐसा है? मैंने तो ध्यान नहीं दिया, नक्श ने हल्का चौंकते हुए कहा। उसका ध्यान कहीं और था, वो अभिमन्यु की बातों के बारे में सोच रहा था जब अभिमन्यु ने उसे ये पूछा था कि क्या आयशा के पेट में पल रहा बच्चा सच में उसका है। अचानक नक्श ने थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, आयशा क्या सच में ये बच्चा मेरा है? नक्श के मुंह से अचानक ऐसा सवाल सुनकर आयशा चौंक गई थी। हालांकि उसने अभिमन्यु और नक्श की बातें सुनी थी, लेकिन उसे लगा नहीं था कि नक्श उस पर यकीन नहीं करेगा। वो नक्श के साथ ज्यादा बार इंटीमेट नहीं हुई थी और जब भी वे करीब आए थे तब नक्श नशे में था। वो नशे में आयशा को इशिका समझकर उसके करीब आ रहा था। आयशा ने नम आंखों से कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है नक्श? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे नक्श के सवाल ने उसे कितना हर्ट किया हो। नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, चाचू की बातों की वजह से थोड़ा परेशान हो गया था। शायद वो ऐसी बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब तक उनका बच्चा नहीं हुआ है, लक्ष्य ने कवर करते हुए कहा। आयशा ने हाँ में सिर हिलाया। वो बातचीत का टॉपिक बदलना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैंने सुना है उनकी फैमिली के हेड उनके चाचू हैं और वो इस वक्त यहाँ आ रहे हैं। हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन वो तुम्हारी माँ से मिलने के लिए क्यों आएंगे? सोचो, अगर तुम्हारी माँ के इतने अच्छे कनेक्शन होते तो तुम्हारा बिजनेस आज बहुत सक्सेसफुल होता और सिंघानिया इंडस्ट्रीज इस वक्त टॉप पर होती, लक्ष्य ने जवाब दिया, जिस पर आयशा ने हामी भरी। आज से पहले कभी राधिका ने अपने कनेक्शन के बारे में नहीं बताया था। आयशा को मन ही मन राधिका पर गुस्सा आ रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि राधिका की पहुंच इतनी ऊपर तक है तो वो नक्श से शादी तो कभी नहीं करती। वो गुस्से में अंदर बेड पर लेटी हुई राधिका को घूरने लगी। एक पल के लिए उसे ये ख्याल भी आया, अगर राधिका मर जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में काफी बड़े अमीर लोग आएंगे। इस बीच पृथ्वी दो न्यूरोलॉजिस्ट के साथ में वहां पर पहुंचा। जब न्यूरोलॉजिस्ट अंदर गए तब मौका पाकर आयशा भी कमरे के अंदर जा चुकी थी। डॉक्टर को राधिका की हालत के बारे में पूरी तरह कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। उन्होंने राधिका की रिपोर्ट देखी और कहा, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन में बॉडी टेम्पररी स्लीप मोड में चली जाती है। ऐसे समझ लीजिए कि उनके शरीर को आराम की जरूरत है और हमें इन्हें टाइम देना होगा। इसे कब तक होश आएगा डॉक्टर? आदर्श ने परेशान आवाज में पूछा। कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में होश आ सकता है। बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया और फिर वहां से चले गए। राधिका को होश में आने को 2 दिन से लेकर 1 हफ्ता तक लग सकता था। ये जानने के बाद भी आदर्श थोड़ा निश्चिंत थे क्योंकि राधिका ठीक थी। वे राधिका के पास गए और उसका हाथ पकड़कर बोले, तुम चाहो उतना आराम कर सकती हो, पर प्लीज कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा।
आज पहली बार ऋषिका को आदर्श पर दया आ रही थी, तो वहीं आयशा आदर्श के पास जाकर बोली, डैड आप कुछ खा लीजिए। गुस्से में आदर्श ने आयशा का हाथ झटक दिया और उस पर चिल्लाकर बोले, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता क्या? जब तक तुम्हारी मॉम को होश नहीं आ जाएगा मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। ये पहली बार होगा जब आदर्श ने आयशा पर चिल्लाया था। वो डर गई थी। अगर आदर्श को पता होता कि वो मालविका की बेटी है तो वो कभी उससे प्यार नहीं करता। आयशा ने कुछ नहीं कहा और न आंखों से दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ नीचे केशव सिंघानिया आ चुके थे। वो उम्र में लगभग 48 साल के आसपास थे, लेकिन देखने में अभी भी 40 साल के लगते थे। गोरा रंग, बिल्कुल ऋषिका की तरह दिखने वाली हल्की ग्रे आंखें, परफेक्टली सेट किए हुए बाल और फिट बॉडी। कोई भी उनका एटीट्यूड देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। केशव को देखते ही अरमान ने कहा, यहां सब कुछ ठीक है, आप बेवजह इतनी दूर आए। केशव ने अरमान को इग्नोर किया और फिर ऊपर जाने लगे। लिफ्ट बिजी होने के बाद भी उन्होंने लिफ्ट का वेट नहीं किया और सीढ़ियां चढ़ने लगे। अरमान उनके पीछे दौड़कर गया और बोला, मैंने कहा वो ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि अब उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है, बस उन्हें होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अरमान के बताने पर केशव ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी वो रुके नहीं थे। अरमान केशव का ध्यान भटकाना चाहता था, इसीलिए उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, अच्छा अंकल, क्या आप हाई सोसाइटी की सभी औरतों को जानते हैं जो लगभग दादी की उम्र की हों? हाँ जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारी दादी मुझे अपने साथ पार्टी वगैरह में लेकर जाती थी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? केशव ने पूछा। वो मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन अभी मन्यु ने एक फोटो ले रखी थी और वो किसी औरत को ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि हम उसकी मदद कर पाएंगे। ये अच्छा होगा ना जो हम अभिमन्यु की हेल्प करेंगे? अरमान ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। केशव ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, वो बस सीधे ऊपर जा रहे थे। ऊपर पहुंचकर अरमान ने उनके लिए VIP वार्ड का दरवाजा खोला। अभिमन्यु को सबक सिखाने के लिए अरमान केशव को सबसे मिलवाना चाहता था। वो एक्साइटेड होकर आगे गया और बोला, मेरे अंकल आ गए हैं, ये मिस्टर केशव सिंघानिया। बोलते हुए अरमान रुक गया क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा तो केशव वहां पर नहीं थे। अरमान ने आगे कुछ नहीं कहा और तुरंत इधर उधर उन्हें देखने लगा। तभी अरमान की नज़र बाहर की बालकनी पर गई जहां पर केशव खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे थे। अरमान जल्दी से उनके पास जाकर बोला, अंकल आप अंदर क्यों नहीं आए? मैं यहीं पर खड़े होकर उनके होश में आने का इंतजार करूंगा, तुम मुझे बता देना, केशव ने जवाब दिया। अरमान को उनके बर्ताव पर थोड़ी हैरानी हुई। उसने तुरंत पूछा, लेकिन आप यहां इतनी दूर आए हैं और बिना मिसेस सिंघानिया से मिले कैसे रह सकते हैं? क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि हम इस जन्म में एक दूसरे से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, केशव ने मायूसी से कहा। हाँ, यही वादा केशव ने राधिका से किया था जब उन्होंने गलती से अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी, वरना अब तक तो वो कब का राधिका को ढूंढकर अपना बना चुके होते। अरमान ने महसूस किया कि केशव का चेहरा उतर गया था। उसे लगा कि उन दोनों के बीच में पहले कोई बहुत गहरा रिश्ता रहा होगा, तभी इस तरह का वादा एक दूसरे से किया था। केशव अपने टाइम में काफी फेमस और दिल फेंक आदमी था, लेकिन बाद में उन्होंने शादी तक नहीं की। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राधिका और उन्होंने कभी न मिलने का वादा किया था। अरमान काफी कुछ पूछना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने धीरे से इतना ही कहा, तो अब आगे क्या करना है? थोड़ी देर में कुछ न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पहुंचते ही होंगे, राधिका के ठीक होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम जाओ जाकर एक बार उसे देखाओ, केशव ने जवाब दिया। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चला गया था। उसने देखा कि पृथ्वी दो न्यूरोलॉजिस्ट के साथ आया था, वे वहां से जा चुके थे। वहीं अरमान को देखते ही आयशा ने पूछा, मैंने सुना है आपके अंकल यहाँ आए हैं। अरमान के अंकल का जिक्र होते ही आदर्श का चेहरा डर से पीला हो गया था। उसने राधिका का हाथ पकड़ लिया और उसे डर लगने लगा कि कहीं केशव राधिका को उससे अलग न कर दे। आयशा ने आगे पूछा, मिस्टर सिंघानिया बाहर क्यों हैं? उन्हें अंदर आना चाहिए। नहीं, वो बाहर ही ठीक है, वो यहाँ आए हुए थे तो हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल चले आए, अरमान ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा। ठीक है, फिर मुझे और नक्श को उनसे मिलना चाहिए, वो यहाँ इतनी दूर आए हैं, अच्छा नहीं लगेगा जब हमारी फैमिली से कोई उनसे नहीं मिलेगा तो, आयशा ने एक्साइटेड होकर कहा, जिस पर अरमान ने सिर हिला दिया। अरमान के हाँ कहते ही नक्श और आयशा केशव से मिलने के लिए जा रहे थे। इस सच से अनजान आयशा इस वक्त राधिका की बेटी होने का नाटक कर रही है। वो सिर्फ राधिका की नहीं बल्कि केशव सिंघानिया की भी बेटी थी। अरमान चाहता था कि सिर्फ नक्श और आयशा ही नहीं, अभिमन्यु भी इशिका के साथ जाकर उनसे मिले।